ओम शांति, ओम शांति। पिछले राजयोग अभ्यास के सत्रों में आपने समझा, राजयोग अर्थात आत्मा का परमात्मा से मानसिक स्नेह पूर्ण संबंध। ये संबंध सर्वश्रेष्ठ संबंध है, क्योंकि ईश्वर के साथ संबंध आत्मा का सर्वोच्च संबंध है, सर्वश्रेष्ठ के साथ संबंध है, और ये सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला भी संबंध है। तो हमारे जीवन में ईश्वर का संबंध भी महत्वपूर्ण है। राजयोग को हम राजयोग कहते हैं, क्योंकि ये हमें स्वयं का राजा बनाता है, कर्मेंद्रियों का अधिकारी हमें बनाता है। सामान्यतः हम कर्मेंद्रियों के अधिकारी नहीं, कर्मेंद्रियों के गुलाम होते हैं, यानी कर्मेंद्रियां हमें जैसे चलाती हैं वैसे हम चलते हैं। लेकिन योग अभ्यास के पश्चात इंद्रिय संयम होने लगता है। ये राजयोग है, क्योंकि ये हमें राजाओं का राजा बनाने वाला योग है। इस योग से हमारे संस्कार श्रेष्ठ होते हैं और मनुष्य देवता बनते हैं। आपने सुना होगा, नर ऐसी करनी करे जो नारायण हो, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी हो। तो हमारे कर्म जो श्रेष्ठ होते हैं, उससे फिर राजाई कुल में जन्म होता है। ये राजयोग है, क्योंकि इसमें अनेक राज समाये हुए हैं। उन राजों को जानने के बाद हम राजयोग का अभ्यास कर पाते हैं, और वो है स्वयं का राज, परमात्मा का राज। इसमें समय का राज भी है, जो अभी आगे के सत्रों में आपको बताया जाएगा। तो ये सब राज हम राजयोग में समझते हैं। राजयोग एक चार्जर की तरह है। जैसे बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसे चार्जर के द्वारा हम पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं और वो फिर से चार्ज हो जाती है। तो डिस्चार्ज होने की साइंटिफिक मैकेनिज्म है कि उसके जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसको चार्जर में लगाते हैं, तो उसके केमिकल कंपोनेंट्स फिर से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और इस तरह से बैटरी चार्ज होती है। राजयोग में हमारे जो मन बुद्धि संस्कार हैं, हमारी आत्मा रूपी बैटरी भी चार्ज होती है, क्योंकि हमारे जो मन वचन कर्म है वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। नॉर्मली हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, लेकिन सोचना, बोलना और करना एक समान होना माना, वो हमारे मन वचन कर्म व्यवस्थित हैं। राजयोग एक बांध बनाने की तरह है। जैसे नदी पर जब हम बांध बनाते हैं, तो पानी का संचय होता है, नहीं तो वही पानी व्यर्थ चला जाता है, और फिर उसको हम सदुपयोग करते हैं, कैनाल्स निकाल कर उससे सिंचाई होती है, उससे बिजली बनती है, वो पीने में प्रयोग होता है, और यदि नहीं तो अगर नदी का जल स्तर बढ़ जाए तो वो जन धन की हानि भी कर सकता है। तो मन की शक्तियों के साथ भी ऐसा है कि जब हम उसे व्यर्थ गंवाते हैं, तो मनुष्य अपने जीवन में वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं। लेकिन जब मन की शक्ति का संचय होता है, मन समर्थ है, हमारा मनोबल ऊंचा है, तो फिर लक्ष्य को हासिल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। राजयोग स्वयं परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ योग है। ये किसी गुरु ने या महात्मा ने नहीं सिखाया है। तो इसीलिए राजयोग सभी योगों का समन्वय है, सभी योगों का फल देने वाला है। भारत में कई प्रकार के योग किए जाते हैं, 7-8 प्रकार के योग हैं। इसमें ज्ञान योग है, बुद्धि योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, संन्यास योग, समत्व योग, हठ योग, क्रिया योग, विपस्सना योग, ऐसे कई प्रकार के योग भारत में किए जाते हैं। तो ये ज्ञान योग है क्योंकि ये ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान अर्थात समझ, इसमें हमें समझ है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्यों योग का अभ्यास कर रहे हैं, परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, ये सब हमने समझा। तो अंधश्रद्धा नहीं है, इसीलिए ये ज्ञान योग है। और ये बुद्धि योग है क्योंकि परमात्मा से संबंध का अनुभव हम मन और बुद्धि के माध्यम से करते हैं। मन के विचार या मन का चिंतन हमें परमात्मा की ओर ले जाना है और उससे संबंध का अनुभव करना है। और ये अदृश्य माध्यम है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी हमारा संबंध होता है। आज विज्ञान के इस युग में हम अदृश्य माध्यमों के अनुभवी हैं। मोबाइल से हम बात करते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हम बात कर सकते हैं। दिखाई देने वाला कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रक्रिया तो होती है कि हमारे मोबाइल सेट से साउंड वेव्स निकलती हैं, टावर से होते हुए दूसरे मोबाइल सेट पर पहुंचती हैं, फिर वहां से पुनः वही ट्रांसफर होता है और हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि हम सामने ही बात कर रहे हों। आज हम बहुत सारे साधनों के लिए रिमोट का प्रयोग करते हैं, टीवी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, कार ऑपरेट करते हैं। दिखाई देने वाला कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई एनर्जी है जो काम कर रही है। तो यहाँ भी मन से जब हम ईश्वर का चिंतन करते हैं तो हमारी विचार तरंगे परमात्मा तक पहुँचती हैं और ईश्वर की शक्तियों को भी हमारा मन ग्रहण करता है, तो वो संबंध स्थापित होता है हमारा। वैसे भी हम अनुभवी हैं, मंदिर में हम जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, हमें पता है कि मूर्ति तो जड़ है, मूर्ति नहीं सुनती है, लेकिन फिर भी हम अपने मन की बात मूर्ति के सामने कहते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं भगवान जहाँ भी है उस तक मेरे मन की बात पहुँचेगी। और जब हमारा वो संकल्प पूरा होता है तो हम क्या कहते हैं, भगवान ने मेरी सुन ली। तो कैसे सुन ली, तो वो भी तो मन से ही संबंध बना। तो मन माध्यम, मन और बुद्धि के द्वारा हम परमात्मा से करते हैं। और राजयोग कर्म योग है, कर्म करते हुए ईश्वर की याद, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, ये हमारे हम करते ही हैं। और ये कर्म करते हुए जब हम भगवान को याद करते हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, सत्कर्म हो जाते हैं। सांसारिक स्मृतियों में ही कर्म करते हैं तो वो कर्म जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, फल होता है। कर्मों की तुलना हम बीज से करते हैं कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, लेकिन परमात्मा की याद में जो हम कर्म करते हैं वो सत्कर्म एक का पदम गुना फल देने वाले, वो आम के बीज बोने की तरह है। जैसे हम आम तो वो तुरंत फल नहीं देता है, कुछ इंतजार करना पड़ता है हमें, और जब एक बार फल मिलता है तो फिर हम ही नहीं खाते, हमारी पीढ़ियां भी उसको खाती हैं। तो अनगिनत फल हम कहेंगे उस बीज से, एक बीज से मिलता है। तो ऐसे ही जो कर्म परमात्मा की याद में किए जाते हैं वो हमें वर्तमान में ही उस फल का अनुभव नहीं कराते, वर्तमान में वो खुशी और शक्ति तो मिलती ही है, लेकिन भविष्य अनेक जन्मों तक वो प्रालब्ध हमें मिलती है। राजयोग भक्ति योग भी है। भक्ति माना परमात्मा के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव, और ये संबंध में होता है। तो ईश्वर से हमारे सर्व संबंध हैं। हम कहते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, हम कहते तुमेव सर्व मम देव देव, आप ही मेरे सब कुछ है, माना ऑल इन वन है। दुनिया में सब संबंध एक में नहीं होते, माता अलग, पिता अलग, बहन अलग, भाई अलग, दोस्त अलग, पत्नी बच्चे सब अलग अलग होते हैं, शिक्षक अलग, गुरु अलग, लेकिन परमात्मा में वो शक्ति है जो वो एक में ही हमें सर्व संबंधों का अनुभव कराते हैं। तो जो भी परम भक्त हुए परमात्मा के, उन्होंने भगवान को कोई ना कोई संबंध से याद किया। जैसे मीराबाई ने उन्हें पति के रूप में याद किया, प्रहलाद ने उन्हें पिता के रूप में याद किया, अर्जुन ने उन्हें अपना दोस्त या सखा माना, ऐसे ही तुलसीदास जी ने भी उन्हें सखा के रूप में याद किया। तो जिसने जिस संबंध से याद किया, परमात्मा ने समय आने पर उन्हें उस संबंध का अनुभव भी कराया। तो राजयोग में भी हम सर्व संबंधों से परमात्मा को याद करते हैं। जो संबंध हमें विशेष प्रिय हैं उस संबंध से, या जब जिस संबंध की हमें आवश्यकता है उस संबंध से हम भगवान को याद कर सकते हैं। ये संन्यास योग भी है। संन्यास अर्थात हमारी भारतीय संस्कृति में संन्यास माना घर बार छोड़कर जंगल में तीर्थ पर आश्रम बनाकर रहना और भगवान की याद में अपना जीवन बिताना। और इसीलिए जब भी हम अध्यात्म की ओर आते हैं तो भ्रम होता है कि कहीं हमको भी सब कुछ छोड़ना तो नहीं पड़ेगा। तो परमात्मा हमें इस तरह का संन्यास नहीं सिखाते। संन्यास अर्थात विकारों का, बुराइयों का संन्यास, अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, अपने कर्म करते हुए, अपनी जिम्मेवारियों कर्तव्यों का पालन करते हुए, संबंधों का निर्वाह करते हुए बुराइयों का संन्यास करना। उनका हम करना ही चाहते हैं क्योंकि ये हमें दुख देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि इनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। परमात्मा हमें वो विधि बताते हैं। तो अगर संसार में रहते हुए हम विकारों का संन्यास करते हैं तो ये उस संन्यास से भी महान संन्यास है, क्योंकि घर बार छोड़कर चले गए और अगर बुराई नहीं छोड़ पाए, ऐसा हम देखते हैं बहुत से सन्यासी हैं, सन्यास तो कर लेते हैं लेकिन विकारों को नहीं छोड़ पाते। आज इसके कारण कई जेल में हैं, सन्यास को बदनाम करते हैं। तो परमात्मा हमें ऐसा सन्यास नहीं सिखाते। समत्व योग है राजयोग। समत्व स्थिति माना हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, इससे हमारा जीवन गुजरता है। कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम सफल होते हैं, कभी हम असफल भी होते हैं, कभी हमारी प्रशंसा होती है, कभी हमारी निंदा भी होती है। लेकिन योगी अर्थात हर स्थिति में मन संतुलित रहे, मन शांत रहे, मन स्थिर रहे, सुख में, सफलता में अहंकार में आना और दुख और असफलता में निराश हताश हो जाना, ये मन को विचलित करने वाली स्थितियां होती हैं। तो एक राजयोगी जानता है कि हर स्थिति परिवर्तनशील है, ना सुख सदा रहने वाला है और ना ही दुख सदा रहने वाला है। तो योग से जो शक्ति हमें मिलती है उससे हम हर परिस्थिति को सहज पार कर लेते हैं और यही योग की सिद्धि है। राजयोग हठ योग भी है। हठ हम देखते हैं भक्ति में, कई भक्त भगवान के साथ करते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए या परमात्मा भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठिन साधना करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। जैसे नवरात्रे में निर्जल व्रत रखेंगे 9 दिन, नंगे पैर पैदल मीलों चलकर दर्शन करने के लिए जाएंगे या कठोर साधना करेंगे, कुछ इस तरह के। लेकिन राजयोग में हम इस तरह का हठ नहीं करते, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन हो। जैसे वो व्रत रखते हैं तो किसी भी स्थिति में अपना व्रत नहीं तोड़ते ना। अगर कोई स्वादिष्ट भोजन भी सामने लाकर रख दे तो क्या कहेंगे, आज मेरा व्रत है, आज नहीं। तो ऐसे ही हमने व्रत लिया कि आज सारे दिन मुझे गुस्सा नहीं करना है, एक एग्जाम्पल के रूप में। तो फिर कोई भी कारण बन सकता है। कारण तो दिन भर में कई बन जाते हैं, कोई हमारी बात नहीं मानेगा, कोई गलती करेगा, कोई हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, कोई झूठ बोल देगा। लेकिन कुछ भी परिस्थिति उत्पन्न हो, लेकिन मुझे गुस्सा आज नहीं करना है। और अगर एक दिन हम अपने इस व्रत में सफल हो गए तो फिर हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हम अपनी इस कमी पर विजय पा सकते हैं। तो इस तरह से राजयोग हमें सभी योगों का फल देता है, सभी योगों का अनुभव कराता है। अब हम जो आधार प्रयोग करते हैं परमात्मा को याद करने के लिए, वो आधार ज्यादातर स्थूल आधार हैं, जो हमारे मन को परमात्मा में एकाग्र नहीं कर पाते, उस संबंध का अनुभव हमें नहीं करा पाते। हम अपने घर में कोई ना कोई पूजा का स्थान बनाते हैं, जहाँ पर हम जो भी हमारे इष्ट हैं उनकी मूर्ति रखते हैं, चित्र रखते हैं, और रोज नियम से हम अपना जो भी दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, कोई स्तुति करना, मंत्र करना, जो भी माला करना, जो भी हमारी विधि है, उस विधि को हम करते हैं। और हमारा भाव क्या होता है, हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। कोई विशेष दिन होते हैं तो हम मंदिरों में दर्शन करने भी चले जाते हैं। तो भक्ति, पूजा, पाठ, हवन, यज्ञ करना, ये हमारी विधि होती है। लेकिन वही हमारी शिकायत होती है कि भगवान की याद में हमारा मन नहीं लगता है। अब जैसे माला जाप करते हैं कुछ लोग, आजकल तो इतना नहीं लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं, तो माला के मणके घुमाते हैं लेकिन उतना मन एकाग्र नहीं होता, माला के मणके के साथ साथ मन भी घूमता है। तो इसीलिए कबीर दास जी ने कहा, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो वास्तव में तो मन को ईश्वर में लगाने की बात है ना। हम मन का क्यों फेर रहे हैं, ताकि हमारा मन ईश्वर में लग जाए। तो केवल मन का घुमाने की बात नहीं, फिर मंत्र जपते हैं, कुछ लोग गुरु मंत्र देते हैं या कोई उपाय बताते हैं, जीवन में कोई कष्ट है या विघ्न है तो उसके लिए जब पूछते हैं तो कोई उपाय बताते हैं, आप इस मंत्र का जाप करो। तो जब मंत्र जपते हैं तो मन थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि मन सांसारिक बातों से निकल कर मंत्र में आ जाता है। लेकिन जो मंत्र हैं वो संस्कृत में होते हैं, और संस्कृत आज हमारी भाषा नहीं है, तो हमारे मन के भाव नहीं जुड़ते, क्योंकि हमें उसका अर्थ ही नहीं मालूम है। गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः सत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ना, तो हम में से कितनों को इसका अर्थ मालूम है? या हम कहते हैं ओम नमो शिवाय, इसका अर्थ होता है मैं शिव को नमन करती हूँ, तो मैं कौन ये भी मुझे पता नहीं और शिव कौन है ये भी मुझे पता नहीं, तो क्या मेरा नमन शिव तक पहुंचता है? फिर ये कहा जाता है इतनी बार मंत्र जपना, 108 बार, 1008 बार, 1,00,000 बार, तो हमारा योग किसके साथ होता है? गिनती के साथ, 108 बार हुआ कि नहीं हुआ, 1008 बार हुआ कि नहीं हुआ। तो भगवान के साथ योग लगने की बजाय वो गिनती में योग ज्यादा हमारा लगा हुआ होता है, तो मंत्र से भी हम ईश्वर का संबंध अनुभव ज्यादातर नहीं कर पाते हैं। मंत्र संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सलाह देना, जैसे मंत्री माना सलाहकार, मंत्रणा माना सलाह, तो हम अपने मन को सलाह देते हैं जो मन को मुक्त करता है अशांति से, दुख से। तो राजयोग में हर विचार ही एक मंत्र की तरह है, क्योंकि हम अपने मन को सलाह दे रहे हैं, उसको सत्य समझ दे रहे हैं, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, यही मेरा निजी स्वभाव है, फिर मैं परम धाम से सृष्टि पर आई हूँ। तो हमारे से शांति कितनी दूर है? एक संकल्प की दूरी पर है, जब मैंने अपने शांत स्वरूप का अनुभव किया, क्योंकि चिंतन से अनुभव होता है, जैसा हम चिंतन करते हैं जो हमारी स्मृति होती है वही हमारी स्थिति बनती है। आज अगर हम दुख का अनुभव करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे विचार दुख के हैं, तभी मुझे दुख का अनुभव होता है, और अगर हम खुशी का अनुभव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे विचार खुशी के हैं, तभी मुझे खुशी का अनुभव हो रहा है। तो विचारों से ही हमारी महसूसता या अनुभूति है, तो जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा ही हम अनुभव करते हैं। तो राजयोग में हम इन मंत्रों का जाप नहीं करते, लेकिन जो ज्ञान का हम स्मरण करते हैं वही मंत्र की तरह काम करता है। तो हम राजयोग में स्थूल आधार नहीं लेते, लेकिन जिन आधार पर हम किसी मनुष्य को सहज याद कर सकते हैं, क्योंकि ये सहज राजयोग है ना, इसमें हम कोई कठिन क्रियाएं या आसन नहीं करते, हाँ, या जो हमने बताया ये सब आधार नहीं लेते, माला मंत्र या जो भी यज्ञ तप करना, ये सब आधार हम राजयोग में नहीं लेते, लेकिन मन को सहज ईश्वर की याद आए, जैसे एक बच्चा अपने पिता को सहज याद करता है, नेचुरल याद होती है, उसके लिए उसको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही परमात्मा हमारा पिता है, उसकी याद हमें सहज आए। उसके चार आधार हैं परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। परिचय होना चाहिए, दुनिया में जिससे हम परिचित नहीं है उसको हम याद कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो पहले हमें परिचय चाहिए, तो हमें स्वयं का भी परिचय मिला और परमात्मा का भी परिचय मिला ना, साधक कौन है और साध्य कौन है, ये अभी हमें परिचय है। मानो कुमार कुमारी हैं, शादी की उम्र में हैं, उनका संबंध तय होना है, और जब तक तय नहीं हुआ है तब तक बुद्धि भटकती है, कौन होगा कौन होगा, और जब तय हो जाती है तब सगाई हो जाती है, उसके बाद बुद्धि स्थिर हो जाती है, माना याद टिक जाती है। तो परमात्मा का परिचय नहीं है वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, तब तक हमारी बुद्धि भटकती है, भगवान की याद में हमारा मन एकाग्र नहीं होता, लेकिन अब हम उनसे परिचित हैं। तो परमात्मा का परिचय और संबंध स्नेह, उससे हमारा संबंध है, सर्व संबंध है हमारे ईश्वर के साथ, और उसके आधार पर स्नेह होता है, संबंधों में स्नेह होता है, और इसके आधार पर तीन प्रकार की याद होती है, हम याद करते हैं, याद आती है और याद सताती है। याद करते हैं स्वार्थ से, ना किसी से मेरा कोई काम है और मुझे करवाना है तो हम उसको याद करते हैं कि वो मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, या मेरे घर में कोई अवसर है और हमें निमंत्रण देना है हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, तो हम पूरी लिस्ट तैयार करते हैं कि कोई रह ना जाए, तो खास याद करके सबको हम बुलाते हैं। तो याद करना, फिर याद आती किसकी है, जो हमारे समीप संबंध में होते, जिनसे हमारा बहुत स्नेह है, उनको हमें याद करना नहीं पड़ता, खासकर जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं उनकी याद आती है। और याद सताती है, वो कौन सी याद है, दुख देने वाली याद, जिनको याद करके मन दुखी हो जाए, तो होता है जिनसे सदा के लिए अलग हो जाते हैं, या किसी की मृत्यु हो गई, अब पता है वो कभी भी लौट कर नहीं आएंगे, तो जब भी उनको याद करेंगे तो मन दुखी हो जाएगा। तो इन तीनों प्रकार की याद में से परमात्मा की याद कौन सी याद होनी चाहिए? हम याद करते हैं, याद आती है और याद सताती है। जो समझते हैं याद करते हैं वो हाथ उठाएं, जो समझते हैं याद आती है वो हाथ उठाएं, और जो समझते हैं याद सताती है, इसमें बहुत कम है। तो बिल्कुल सही बात कि परमात्मा की याद सताने वाली याद नहीं हो सकती, क्योंकि वो सुख दाता है, दुख हरता सुख करता है। तो जब भी हम ईश्वर को याद करते हैं हमारा मन सुख का अनुभव करता है, उस ईश्वरीय सुख का अनुभव करता है। और भगवान तो अनादि हैं, अविनाशी हैं, जैसे सदा के लिए कोई अलग हो जाए नहीं, हम कभी भी उसको याद करें वो हमारे लिए हाजिर है, ये भगवान की शक्ति है। तो इसीलिए उसकी याद सताने वाली याद नहीं हो सकती, लेकिन परमात्मा की याद हमें आनी चाहिए, पर आती नहीं है, क्योंकि इतना समीप संबंध हमारा भगवान के साथ हम अनुभव नहीं करते, लेकिन हम उसे याद करते हैं, स्वार्थ से हम भगवान को याद करते हैं। हम एक एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मैं आपको कहूंगी उस हिसाब से आप अपने मन में उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिनसे आपको बहुत प्यार है, यानी वो आपके जीवन में प्रथम स्थान रखते हैं, सबसे प्रिय कोई ना कोई होता है, तो आप उसे याद करें, चाहे वो आपके फैमिली में है, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में है, कोई भी जो सबसे प्रिय है आपको। फिर दूसरा नंबर टू पर जिसको आप मानते हैं उसे स्मृति में लाएं, फिर नंबर तीन पर जो है आपके जीवन में प्रिय उसके बारे में सोचें, और इन तीनों में आप में से किसी ने ईश्वर के बारे में सोचा, इन तीन संबंधों में किसी के भी संबंध में ईश्वर का स्थान आया? सिर्फ एक ने हाथ उठाया, तो इसका मतलब हम ईश्वर से समीप संबंध, वो हमारा सबसे प्रिय है, उसका वो स्थान हमारे जीवन में नहीं है, तो इसका मतलब हम उसे याद करते हैं स्वार्थ से। ज्यादातर दुख के समय हम याद करते हैं, इसीलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करे सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का एक होए। फिर हम कुछ इच्छा पूर्ति, जो कहा मनोकामना हमारी पूर्ण करनी है, तो हमें भगवान को याद करना या उसकी याद आती है। एक स्टूडेंट है, उसे एग्जाम में पास होना है, भगवान मुझे पास करा देना, फिर पास हो गए, अब नौकरी चाहिए तो अच्छी नौकरी लगा देना, फिर नौकरी लग गई तो अच्छे घर में शादी करा देना, शादी हो गई अभी एक अच्छा घर होना चाहिए, फिर एक गाड़ी होनी चाहिए। यानी इस संसार की भी जो वस्तुएं हैं उसकी कामना भी हम ईश्वर से करते हैं, ना सिर्फ वो लेकिन हम सौदा भी करते हैं कि अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो गई तो कितने रुपए का प्रसाद हम चढ़ाएंगे। तो हमारी इच्छा पूरी हो गई तो भगवान को प्रसाद मिलेगा, और अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो प्रसाद भी नहीं मिलेगा। तो हम यहां उसको मनुष्य की श्रेणी में ले आते हैं। हम समझते हैं मनुष्य बिना लेन देन के काम नहीं करते, तो भगवान को भी जब तक हम कुछ देंगे नहीं तब तक वो हमारा काम नहीं करेंगे। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी, मांगन से मरना भला, ये सद्गुरु की सीख। बिना मांगे मोती भी मिलते हैं और मांगने से भीख भी नहीं मिलती, और हम अनुभवी हैं अपने जीवन में। कोई हमारे सामने भिखारी आकर भीख मांगता है तो हमें अच्छा लगता है, पसंद आता है क्या? हम देखते हैं अगर वो काम कर सकता है तो हम उसको कह भी देते हैं कि क्यों नहीं काम करके कमा के खाते हो, है ना। लेकिन अगर हमें लगता है कि वो सचमुच दया का पात्र है और उसे मिलना चाहिए, तो भी हम कितना देते हैं, मेरी पॉकेट में जो सबसे कम नोट निकलेगा वो हम उसको देते हैं। तो हम जज करते हैं कि उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो हम भगवान के सामने खड़े होते हैं तो क्या भगवान हमें जज नहीं करेगा कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो अगर मिलना चाहिए तो मिलेगा, और नहीं मिलना चाहिए तो निश्चित है। तो ये कई बार हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, फिर हम भगवान से शिकायत करते हैं, उसे कई बार दोष भी देते हैं, लेकिन परमात्मा से हमें मांगना नहीं है, क्योंकि उसने हमें ऑलरेडी मनुष्य योनि, जो मानव शरीर है वो अद्भुत शरीर है, यानी उसमें असंभव को संभव करने की ताकत है। ये शक्ति भगवान ने हमें पहले से ही दी है। तो हम कर्म करें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं अपने जीवन में, और वो उसके बिना अगर हम उसके सामने खड़े होते हैं तो, जैसे मैंने कहा, तो परमात्मा से हम संबंध का अनुभव करें, संबंध से याद करें, तो हम अधिकारी हैं। जैसे दुनिया में भी जो संबंध है, माता पिता बच्चे का संबंध है, तो बच्चे अधिकारी हैं, मांगना नहीं पड़ता है। कौन प्रबंध कर रहा होता है कि बच्चों को क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन से स्कूल में पढ़ना है, क्या उनका भविष्य होना चाहिए, कौन कर रहा है उनकी आवश्यकताएं पूरी? माता पिता अपने आप कर रहे हैं, सिर्फ एक संबंध है। तो अगर ये संबंध हमने भगवान से अनुभव किया तो उसे पता है कि मुझे क्या चाहिए, और समय पर हमारी वो आवश्यकताएं स्वतः ही पूरी होंगी, हमें मांगने की जरूरत ही नहीं है। तो राजयोग में हम परमात्मा को अधिकार से याद करते हैं, मांगते नहीं हैं। जैसे आपने चिंतन किया दो दिन से, कोई भी ऐसा संकल्प नहीं करेंगे मुझे शांति दे दो, शक्ति दे दो, या जो भी, लेकिन परमात्मा शांति के सागर हैं और मैं आत्मा उनकी संतान शांत स्वरूप हूं, तो मैं उनकी संतान हूं तो उनके जैसे गुण ही मुझ में, मुझ आत्मा में है। तो संबंध को हम समानता से अनुभव करते हैं परमात्मा के साथ, इस संबंध की अनुभूति समानता के आधार पर। दुनिया में भी जहां संबंधों में समानता है तो समीपता होती है, तब अपनापन होता है। मानो दो बच्चे आपस में मिलते हैं तो बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं, दो डॉक्टर आपस में मिलेंगे तो बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है, या दो लॉयर मिलेंगे, माना कुछ कॉमन है, प्रोफेशन कॉमन है, आयु कॉमन है, या विचार मिलते हैं कुछ ना कुछ समानता हमारी है। यहां तक कि जब शादी करते हैं तो कुंडली मिलाते हैं, तो कुंडली मिलाते हैं तो गुण मिलते हैं, तो ज्योतिषी कहेगा योग है, और अगर गुण नहीं मिलते हैं तो कहेगा योग नहीं है। तो मिलना चाहिए, गुण मिलने चाहिए तब शादी टिकेगी, माना समानता चाहिए, गुणों की समानता है तो शादी टिकेगी, नहीं तो नहीं। तो परमात्मा के साथ भी हमारी तीन समानताएं हैं, उसका हम योग में अनुभव करते हैं, वो है स्वरूप की समानता, धाम की समानता और गुणों की समानता। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो हम पहले आत्म चिंतन करते हैं, राज्यों का जब हम प्रारंभ करते हैं तो हम आत्म चिंतन करते हैं, मन को आत्मिक स्थिति में ले जाते हैं। परमात्मा निराकार हैं, वो तो सदा ही परम ज्योति स्वरूप हैं ना, उनको तो हमारे जैसा देह है ही नहीं, लेकिन हमारे ऊपर ये देह रूपी आवरण है। तो जैसे हमें तार को जोड़ना है, जब हम तार से तार को जोड़ते हैं तभी करंट फ्लो होता है। अगर रबड़ सहित तार को जोड़ देंगे तो करंट फ्लो होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो इंसुलेटर का काम करता है। तो ऐसे ही मन को हमें परमात्मा की समान स्थिति में ला करके जब हम उससे कनेक्ट करते हैं तो ईश्वर की करंट हम स्वयं में अनुभव करते हैं। मानो कोई रेडियो स्टेशन हमें ट्यून करना है ना, जैसे एफएम रेडियो सुनते हैं, तो हमें उसे उसी फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करना होता है जिस फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसमिशन हो रहा है। अगर सेम फ्रिक्वेंसी पे नहीं रखेंगे तो हम कितनी भी कोशिश कर लें वो रेडियो स्टेशन हम नहीं सुन पाएंगे। तो परमात्मा की हायर फ्रिक्वेंसी है और हम हैं फिजिकल वर्ल्ड में, शारीरिक स्तर है हमारा, तो इसीलिए हमें अपनी फ्रिक्वेंसी को भी हायर लेवल पर या हायर कॉन्शियसनेस के लेवल पर ले जाना होता है। और जब हमारी फ्रिक्वेंसी उनके साथ मैच करती है तभी वो कनेक्शन हम महसूस करते हैं। और ये आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है, तो आत्मा समझने से परमात्मा की याद आती है। जैसे जिसका जिसके साथ संबंध होता है, अगर कोई खुद को डॉक्टर समझता है तो पेशेंट्स याद आएंगे, खुद को बिजनेसमैन समझते हैं तो ग्राहक याद आएंगे, हाँ खुद को लॉयर समझते हैं तो क्लाइंट याद आएंगे। तो जिसके साथ कनेक्शन है, पिता समझते हैं तो बच्चे याद आएंगे। तो ऐसे ही आत्मा समझते हैं तब हमें परमात्मा की याद सहज होती है। और दूसरी समानता है धाम की समानता। आत्मा परम धाम निवासी है, परमात्मा भी परम धाम निवासी है, पिता और बच्चे का घर एक ही होता है। तो हम आत्माएं भी परम धाम से ही सृष्टि पर आई हैं, वही हमारा असली घर है। तो मेरे पिता परम धाम में रहते हैं, जब हम उन्हें याद करेंगे तो हमारा मन कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? मानो आप जहां से आए हैं वहां आपके माता पिता रहते हैं, या कहीं और भी रहते हैं, जहां भी रहते हैं, और यहां रहते हुए उनकी कोई बात आपके मन में आती है तो आपका मन कहाँ ट्रेवल करता है, कहाँ जाता है? अगर वो दिल्ली में रहते हैं तो कहाँ जाएगा? दिल्ली जाएगा ना। तो ये मन का स्वभाव है कि वो व्यक्ति जहां है वहां ही जाकर हम उसको याद करेंगे। तो परमात्मा परम धाम में रहते हैं और उसे हम याद कर रहे हैं, तो हमने ये तो समझ लिया कि भगवान कण कण में नहीं है, भगवान सब जगह नहीं है, सब में नहीं है। ये तो कल आपने समझा है ना, स्पष्ट हो गया ना ये बात कि परमात्मा परम धाम में रहते हैं। तो जब वो परम धाम में रहते हैं तो उनको याद करेंगे तो हमारा मन परम धाम में ट्रेवल करेगा। और इसीलिए योग अभ्यास के समय हम मन को परम धाम में ले जाते हैं, जो ब्रह्म लोक है, ब्रह्म महतत्व से बना हुआ है, जहां गोल्डन रेड लाइट है। तो स्थान की समानता भी हमें समीपता का अनुभव कराती है। आप यहाँ आए, मानो आपके शहर का ही कोई यहाँ मिल जाता है आपको, जो भी अपने यहाँ समर्पित भाई बहने हैं उनमें से कोई से आपका परिचय होता है, और जब आपको पता चलता है हमारे शहर के ही नहीं, हमारी सोसाइटी के ही रहने वाले हैं, तो कितना समीप अपनापन उनसे हम महसूस करते हैं, जितना औरों से हम नहीं करेंगे ना? तो ये अंतर होता है। और परमात्मा से हमारी तीसरी समानता है गुणों की समानता। भगवान जिन गुणों में सागर है, आत्मा उन्हीं गुणों में स्वरूप है। वो ज्ञान के सागर है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। वो प्यार के सागर है, आत्मा प्रेम स्वरूप है। वो सर्वशक्तिवान है, आत्मा शक्ति स्वरूप है। वो शांति के सागर है, आत्मा शांत स्वरूप है। तो हम गुणों का स्मरण करते हुए, उसका चिंतन करते हुए परमात्मा को याद करते हैं। यही हम भक्ति में भी करते हैं। भक्ति में हम भगवान को कैसे याद करते हैं? उनके गुणों की स्तुति करते हैं या कीर्तन करते हैं। कीर्तन माना क्या? कीर्ति गाना। क्योंकि उनकी तो महिमा ही है, भगवान में कोई अवगुण और कमी तो है ही नहीं, उनके गुणों का ही हम गायन करते हैं। लेकिन भक्ति में हम सिर्फ क्या करते हैं? जोर जोर से वर्णन करते हैं, मुक्की आवाज से और साज बजाकर, ढोल मंजीरे बाजा, ये सब हम साज और बाजों का प्रयोग करते हैं, तो हमारी शक्तियां बहिर्मुखी हो जाती हैं। जरूर वो भजन कीर्तन करते हुए हमें सुख आनंद शांति का अनुभव होता है, लेकिन वो शक्ति हमारे भीतर नहीं रहती तो परिवर्तन नहीं आता, हम वहीं के वहीं होते हैं। लेकिन राजयोग में हम वही गुणों का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन साइलेंस में हम मन ही मन उसका मनन करते हैं, तो हमारी शक्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं और वो गुणों का स्वरूप हम बनने लगते हैं, यानी हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा होते हैं और हमारा जीवन परिवर्तन होता है। तो ये अंतर है ध्यान और योग करने में और जो हम भक्ति पूजा पाठ करते हैं उसमें। तो कई बार कई भाई बहने कहते हैं कि बहन जी, हम भगवान से और कुछ नहीं मांगते क्योंकि हमारे जीवन में भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन सुख शांति तो मांग सकते हैं। तो मांग सकते हैं, तो सुख शांति भी हमें मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो दाता है ना। हम परमात्मा के समीप अपने मन को ले जाते हैं, जब उनसे संबंध में है तो वो हमें प्राप्ति का अनुभव स्वतः ही होता है। जैसे आग के पास हम बैठे हैं तो हमें गर्मी मांगनी नहीं है, गर्मी अपने आप मिलती है। आज सागर के किनारे हम जाएंगे तो हवा मांगने की जरूरत नहीं है, हवा अपने आप ही मिलती है। सूरज निकला हुआ है तो प्रकाश थोड़ी मांगना है, प्रकाश अपने आप ही मिल रहा है। तो जो शांति का सागर है, जो प्रेम का सागर है, जो सुख का दाता है, उसके समीप मैं हूं तो क्या मुझे मांगना पड़ेगा? अपने आप ही उसके संग से वो हमें अनुभव होता है। सिर्फ मन को ईश्वर के संग में ले जाने की जरूरत है। जैसे प्रकाश, जैसे हम कहते हैं सूर्य का प्रकाश तो फैला हुआ है लेकिन मेरे कमरे में चाहिए तो मुझे खिड़की खोलनी पड़ेगी, है ना, तभी वो प्रकाश मेरे घर में मेरे कमरे में आएगा। तो ऐसे ही हमारे मन की दिशा ईश्वर की ओर होते ही हमें ये सब अनुभूतियां स्वतः ही होती हैं। जब हम योग का अभ्यास शुरू करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में तुरंत हमारा मन एकाग्र नहीं हो जाता क्योंकि हमारा मन सूक्ष्म है और मन की गति बहुत तेज है। एक सेकंड में मन कहीं का कहीं जाता है। तो मैंने चिंतन शुरू किया कि मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, और तीसरा विचार क्या होगा? कोई काम याद आ जाएगा, यहां हॉल से बाहर निकलते ही मुझे इससे मिलना है, ये काम करना है, या कोई व्यक्ति की याद आ जाएगी, फिर हम सोचेंगे नहीं अभी तो योग में बैठे हैं, फिर हम योग में अपना मन ये लगाने की कोशिश करेंगे। तो कई बार एक अंतर्द्वंद या एक संघर्ष की स्थिति कि हम चाहते हैं योग के चिंतन करना, लेकिन आते हैं दूसरे दूसरे विचार, तो फिर लगता है कि योग तो लग ही नहीं रहा है, और यहां तक कि कई बार नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं तो और ही सिर भारी हो जाता है, मन अशांत हो जाता है। क्योंकि जब हम खाली होते हैं ना, जो बातें काम करते हुए हमें याद नहीं आती, वो हम जैसे ही थोड़ा खाली बैठे हमारा मन वो सब चिंतन करना शुरू कर देता है, तो फिर हमें लगता है कि इतना समय हमारा व्यर्थ हो गया। लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें अपना अभ्यास करते रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी कार्य जब हम शुरू करते हैं तो शुरू में वो मुश्किल ही होता है। आप अपने, जब हम अपने ये स्थूल कार्य करते हैं, दुनिया की भी जो कोई भी विद्या जब हम सीखते हैं तो कोई एक ही बार में थोड़ी हम पारंगत हो जाते हैं। आज कोई ड्राइविंग सीखता है मानो, तो एक दिन में ड्राइविंग आ जाती है, कि हमें कई दिन लग जाते हैं जब हम पूरे कॉन्फिडेंस से गाड़ी चला पाए, है ना। तो ये तो मन तो सूक्ष्म है, जब मोटी चीजों के लिए भी हमें अभ्यास करना पड़ता है तब उसमें कुशलता हासिल होती है। तो फिर मन को दिशा दे रहे हैं हम, जो आज तक हमने कभी अभ्यास किया ही नहीं, तो एक ही बार में मेरा मन एकाग्र हो जाएगा, भगवान में लग जाएगा और मुझे अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा हमें समय लगता है, लेकिन अपने अभ्यास को, जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, उसे हमें कंटिन्यू रखना है। एक दीवार को हम तोड़ते हैं, 100 हथौड़े में दीवार टूटती है तो क्या वो 99 हथौड़े बेकार गए? पहले के 99 हथौड़े में हर हथौड़े ने उस दीवार को कमजोर किया, और 100वें हथौड़े में जाकर के वो दीवार टूटी। तो हमारा हर अभ्यास हमें सफलता की ओर ले जा रहा है। मानो मैंने एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, मुझे कुछ अनुभव नहीं किया, चौथी बार में मुझे एक मिनट भी वो शांति का अनुभव हुआ, ईश्वरीय सुख का अनुभव किया, अभी मुझे पांचवी बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरा मन अपने आप टाइम ढूंढेगा कि कब मुझे समय मिले और हम फिर से वही अनुभव करें। तो वो प्राप्ति हमें फिर प्रोत्साहित करती है योग के अभ्यास के लिए। तो पहले हम ये चिंतन शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे जब हमारा मन एकाग्र होने लगता है तो हम मन को परम धाम में परमात्मा के गुणों का स्मरण करते हुए उनकी अनुभूति में जाते हैं, और यहां ही हम ईश्वर से सर्व संबंधों का अनुभव भी करते हैं। फिर जो भी संबंध से हम अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं परमात्मा के प्रति, कोई ना कोई भगवान के प्रति हमारे भाव होते हैं, या हम उनसे कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ अपने दिल की बात सुनाना चाहते हैं, जब वो हमारे सर्व संबंधी हैं तो हम किसको सुनाते हैं? अपने ही संबंधों में सुनाते हैं। मेरे दिल की कोई भी बात है तो जिसको हम सबसे क्लोज समझते हैं सबसे पहले उसको ही हम वो सुनाते हैं। तो यहां भी भगवान से जो संबंध में हम समीपता का अनुभव करते हैं, वो संबंध का अनुभव करते हुए हम उनसे अपने दिल की बात या कोई भी मन का बोझ है वो भी हम भगवान को दे सकते हैं। तो एकाग्र होने लगता है, धीरे धीरे मन भगवान के स्वरूप में एकाग्र होता है, फिर हमें ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं होती। एकाग्रता का मिसाल है जैसे अर्जुन के बारे में प्रसिद्ध था कि उसे लक्ष्य के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। जब गुरु द्रोणाचार्य उनको धनुर्विद्या सिखा रहे थे, सभी को, कौरव पांडव सभी को सिखा रहे थे वो, तो निश्चित है कि बीच बीच में वो उनकी परीक्षा लेते हैं कि कहाँ तक ये इसमें पारंगत हुए हैं। तो ऐसे ही गुरु ने एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए एक मिट्टी की चिड़िया पेड़ पर रखी और उसकी आंख पर निशाना लगाना था। तो उन्होंने पहले युधिष्ठिर को बुलाया और युधिष्ठिर को निशाना लगाने के लिए कहा, लेकिन पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो युधिष्ठिर ने कहा, गुरु जी पेड़ दिख रहा है, डालियां पत्ते भी दिख रहे हैं, चिड़िया भी दिख रही है। तो गुरु ने कहा, तुम निशाना नहीं लगा पाओगे, तुम हट जाओ। फिर उन्होंने दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन से भी यही सवाल पूछा, क्या दिख रहा है? तो दुर्योधन ने कहा, गुरु जी सब दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहा है, पत्ते भी दिख रहे हैं, चिड़िया भी दिख रही है। तो गुरु ने कहा, तुम भी हट जाओ। फिर भीम की बारी थी, भीम से भी वही पूछा, तो उसने भी वही जवाब दिया, तो उसको भी हटा दिया। अब अर्जुन को बुलाया, तो अर्जुन एक मिनट तक पहले अपने मन को एकाग्र करके और फिर उसने कहा, गुरु जी मुझे तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। तो फिर गुरु ने कहा कि तुम निशाना लगाओ, और जब उसने तीर चलाया तो वो सीधा चिड़िया की आंख में लगा। तो लक्ष्य पर हमारी मन रूपी आंख, हमारा मन भी एक आंख का काम करता है ना, इसे हम अंतरचक्षु कहते हैं। जो चीज हम स्थूल चक्षुओं से नहीं देख सकते वो हम मन रूपी चक्षु से देखते हैं ना। अगर मैं घर कहती हूं तो अभी आप एक सेकंड में अपने घर पहुंच जाएंगे, लेकिन कौन सी आंख से देख रहे हैं? कौन सी आंख से देख रहे हैं? तो जब हम उस घर को देख सकते हैं तो फिर अपने घर को और अपने पिता को नहीं देख सकते। तो मेरा मन जब पूरी तरह से परम धाम में और परमात्मा की स्मृति उसके स्वरूप में एकाग्र है, तो फिर सीधा हम अनुभूति की स्थिति में चले जाते हैं। जब मन जो है शांति की स्थिति का अनुभव करता है, सुख की स्थिति का अनुभव करता है, आनंद की स्थिति का अनुभव करता है, वो ईश्वरीय प्यार का अनुभव करता है, और मन की स्थिति बदल जाती है। मानो योग करते समय हम बैठे हैं, अशांत थे मन, मन हमारा ना थोड़ा परेशान था, लेकिन अनुभूति के बाद हम महसूस करेंगे मन शांत हो गया। से मन के कारण से दुखी था, लेकिन अनुभूति की स्थिति माना मन दुख से सुख की स्थिति में आ जाता है, आनंद की स्थिति में आ जाता है। मन उदास है तो मन खुशी में आ जाता है। ये मन की स्थिति का परिवर्तन वो हम अनुभव करते हैं। तो परमात्मा के साथ हमारा संबंध ऐसा है कि हम उनसे बातें कर रहे हैं जो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल हैं। हम कभी भी किसी भी समय कहाँ भी उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। इंसान का संबंध ऐसा नहीं है, वो हमेशा हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, और आजकल तो कोई किसी की बात ज्यादा सुनना भी नहीं चाहते हैं। फिर ईश्वर का संबंध वो है जो हमारे विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। एक इंसान हमारे विश्वास को ठेस पहुंचा सकता है कि हमने किसी पर बहुत विश्वास किया, लेकिन पता चलता है उनसे हमें धोखा मिल गया, समय आने पर धोखा मिल जाता है। फिर ईश्वर को हम प्यार से याद करते, भय से नहीं। कई लोग भय से भगवान को याद करते हैं कि कहीं वो हमें श्राप ना दे दे या कोई हमारे जीवन में बुरा ना हो जाए, अगर भगवान नाराज हो जाएगा तो। नहीं, वो कभी नाराज नहीं होता है, वो तो सदा ही प्यार का सागर है और वो हमारा परम रक्षक है। परमात्मा का जो संबंध है वो कभी भी हमारा, जैसे कहा इसमें कि वो परमात्मा का प्यार निस्वार्थ प्यार है, वो कभी भी हमें एक्सप्लॉइट नहीं करता है ना, और वो सदा ही हमें शक्ति देने वाला है। तो जब हम ईश्वर को याद करते हैं और उनकी शक्तियां जब हमारे मन पर पूरी तरह एकाग्र होती हैं, तो हमारे मन की अशुद्धि दूर होने लगती है और आत्मा पावन बनती है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि कोई कागज ऐसे ही धूप में पड़ा है तो कभी नहीं जलेगा, लेकिन एक लेंस लगा करके जब हम उसको फोकस कर देते हैं, यानी सूरज की किरणों को एक पॉइंट पर फोकस कर देते हैं, तो मिनट में ही कागज जल जाता है। तो एकाग्रता जो है वो ये कार्य करती है। तो जब परमात्मा की शक्तियां मुझे आत्मा पर एकाग्र हैं, तो जो भी आत्मा पर बोझ है या जो भी हमारी अशुद्धियां हैं वो सब भस्म होने लगती है, यानी समाप्त होने लगती हैं और आत्मा का प्यूरिफिकेशन होता है। तो हम ये फ्लो अनुभव करते हैं, परमात्मा की शक्तियों का फ्लो हम अपने ऊपर अनुभव करते हैं और आत्मा रूपी बैटरी जैसे हमारी चार्ज हो जाती है। अब योग की विधि क्या है? योग की विधि में हमारी बैठक कैसी होनी चाहिए? सहज बैठक हम योग में लेते हैं, जैसे कहा हम कोई कठिन आसनों का अभ्यास नहीं करते, लेकिन सहज बैठक में सुखासन, जिसे साधारण भाषा में आलती पालती मार कर बैठना भी कहा जाता है। तो अगर हम वैसे बैठ सकते हैं सुखासन में तो ठीक है, अगर नहीं तो जैसे हम कुर्सी सोफे पर बैठे हैं ऐसे भी हम बैठ सकते हैं। जमीन पर बैठना बेहतर होता है क्योंकि तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है और उससे जो हमारा चार्जिंग होता है उससे हमारी कंसंट्रेशन में हमें मदद मिलती है। इसलिए योगियों को जमीन पर आसन लगा करके बैठे हुए दिखाया जाता है। लेकिन अगर हम नहीं बैठ सकते कोई भी आयु के कारण, ना किसी को घुटनों की तकलीफ होती है, किसी को कमर की तकलीफ होती है, या कोई भी शरीर का कारण है हम नीचे नहीं बैठ सकते, तो हम आराम से जो भी हमारे लिए सुविधाजनक है वहां हम बैठे। करीब 20 मिनट से आधे घंटे का समय हमें मिनिमम देना चाहिए योग अभ्यास के लिए, क्योंकि पहले 10 मिनट तो हमारे मन को संसार के प्रभावों से निकालने में ही हमें लग जाता है, क्योंकि इधर उधर के विचार मन में चलते हैं। जब तक कि हम आध्यात्मिक चिंतन अपने मन में लाएं और उनमें हमारा मन उस फ्लो में आए और धीरे धीरे एकाग्र हो, और फिर कम से कम 10 मिनट तो हम उसका अनुभव करें। और जो इसका समय है वो सर्वोत्तम समय है प्रातःकाल, वैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय, जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा आप यहाँ आते हैं सुबह 4 बजे योग अभ्यास के लिए, नहीं कहा गया आपको, लेकिन यहाँ के जो नियमित यहाँ रहने वाले हैं वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे उठ करके योग का अभ्यास करते हैं, और वो हमारा अपना टाइम होता है। उसके लिए फिर हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि हमें समय कहाँ मिलता है, हम बहुत व्यस्त हैं, लेकिन सिर्फ हमें थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालनी होती है। वो समय सबसे उत्तम समय माना जाता है। अगर नहीं तो हम जब उठें 6 बजे 7 बजे जब भी हम उठते हैं तो हम उस समय अपने लिए वो समय निकालें, और नहीं तो फिर सायंकाल के समय हम योग अभ्यास करें। नहीं तो कर्मयोगी, तो हम राजयोग में कर्मयोगी बन करके भी भगवान को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये मन से उसे याद करना है। तो मन से याद तो हम कहीं भी कर सकते हैं, सिर्फ भगवान हमसे एक संकल्प की दूरी पर है कि हमने सिर्फ अपने विचार का परिवर्तन किया, जैसे स्विच ऑन और ऑफ करना है कितना टाइम लगता है। तो मन में ईश्वर का विचार लाया और हमारा योग भगवान से लगा। तो इस तरह से राजयोग में हम परमात्मा को याद करते हैं सहज विधि से, और ये भी सोचते हैं कि योग करते समय हमारी आंखें बंद होंगी तो हमारा ध्यान अच्छा लगेगा। ज्यादातर जब भी ध्यान करते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन राजयोग हम खुली आंखों से करते हैं। जैसे कहा ये कर्म योग है, तो कर्म करते हुए अगर हम आंखें बंद कर लेंगे तो फिर हम कर्म कैसे करेंगे? तो इसीलिए आंखें खुली रखते हैं। और दूसरा, खुली आंखों में ही हमको मन को एकाग्र करने का अभ्यास है। हम जो भी काम करते हैं जब आंखें खुली होती हैं तभी एक मन उसमें एकाग्र रहता है। अगर हम आंखें बंद करते हैं तो क्या होता है, अगर हम थके हुए हैं और आपने आंखें बंद की तो 5 मिनट में ही सो जाएंगे, तो फिर हम राजयोग नहीं करेंगे, निद्रा योग करेंगे। कई बार हम यहाँ भी देखते हैं जब योग की कमेंट्री देते हैं तो अगर थके हुए यानी अगर नींद पूरी नहीं हुई है तो फिर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। तो हमें कौन सा अनुभव करना है, नींद का नहीं, योग का अनुभव करना है। तो इसीलिए आंख बंद करके जो हम सोते हैं और तुरंत हमारी वो जो रिफ्लेक्सेस हैं वो एक्टिव हो जाते हैं अगर हम आंख बंद करते हैं। और दूसरा, आंख बंद करके हम सपने देखते हैं, सपने भी तो सोते हुए ही दिखाई देते हैं, तो जब हम आंख बंद करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है और सबकॉन्शियस माइंड में इतनी मेमोरीज हैं कि जैसे मैंने कहा कि योग के समय ही फिर वो स्मृतियां जागृत हो जाती हैं, कहाँ कहाँ की बातें याद आने लगती हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और फिर हम सोचते हैं ये मुझे अभी क्यों याद आ रहा है, और फिर जब उन स्मृतियों में मन चला गया तो उनसे निकाल करके हम भगवान में मन को लगा लें, हमारे लिए असंभव जैसा हो जाता है। लेकिन खुली आंख से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन जरूर होगा, पहले हम देखेंगे सब क्या रखा हुआ है, कौन आसपास है, क्या हो रहा है, और कोई आवाज है तो वो भी सुनाई देगी। लेकिन जब हम मन को परमात्मा में लगा लेते हैं ना, जैसे मानो आप कुछ पढ़ रहे हैं और कोई आपके पास से गुजर जाता है, फिर कोई आपसे पूछता है कौन गया, तो आप क्या कहते हैं, पता नहीं, क्योंकि मैं तो पढ़ रहा था, तो आंखें खुली हैं फिर भी मैंने नहीं देखा क्योंकि मेरा मन कहीं और है। तो मन नहीं देख रहा तो फिर आंखें भी नहीं देख रही हैं। तो ऐसे ही मन कहीं और है, मन परम धाम में चला गया, परमात्मा की याद में है, तो फिर इस दुनिया में सामने क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, बोल रहा है, हमें दिखाई देते हुए भी नहीं दिखता और सुनाई देते हुए भी नहीं सुनाई देता। तो वो एकाग्रता की स्थिति हमारी खुली आंखों से भी हो जाती है। तो इसीलिए ये एक भ्रम है कि हमें खुली आंखों बंद आंखों से ही हमारा ध्यान लगेगा। लेकिन हाँ, यदि कोई अनुभव हो रहा है और हमारी आंखें बंद हो जाती हैं तो हम कर सकते हैं। तो राजयोग कोई ऐसा हठ योग भी नहीं है कि बिल्कुल आंखें खुली ही रहनी चाहिए, तो जैसा जब होता है, लेकिन आदत हम ऐसी डालें ताकि हम इसे कर्म योग की तरह भी कर सकें। और राजयोग में हम अपने विचार, मन को विचार शून्य नहीं करते, क्योंकि मन विचार शून्य नहीं हो सकता, थॉटलेस नहीं हो सकता, मन की आदत सोचने की है, तो मन की दिशा को हम मोड़ते हैं, सांसारिक विचारों से मन को निकाल करके हम आध्यात्मिक विचारों में ले आते हैं, जो मेरे जीवन के स्पिरिचुअल ट्रुथ्स हैं उसमें हम मन को ले जाते हैं। तो मन को रोकना नहीं है, मन को दबाना नहीं है, लेकिन मन को सुमन बनाना है। और कई बार हम सोचते हैं कि बहुत मन हमारा तेज गति से चलता है, मन तो बेलगाम घोड़े की तरह है, ऐसा मानते हैं। तो इसीलिए मन को लगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अभ्यास की बात है, थोड़े अभ्यास के बाद हम अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं। फिर दूसरा, हम योग के समय कुछ लाइट्स को चेंज करते हैं, आपने देखा यहाँ रेड लाइट करते हैं, तो वो परम धाम का रंग है, कोशिश करते हैं कि हम वो अनुभव करें, हालांकि वैसा ही रंग तो नहीं बना सकते, तो एक मन को एक कंडीशनिंग देने के लिए, क्योंकि मन को हमें, हम योग में बैठे हैं और मन को हम परम धाम में ले गए, कुछ ऐसी अनुभूति हम करें। फिर लाल रंग जो है वो स्टॉप का भी सिग्नल है कि अभी हमें और सब विचारों को स्टॉप करके मन में ईश्वर के चिंतन के विचार ही करने हैं। फिर लाल शक्ति का भी प्रतीक है, तो मन की शक्ति हमारी जमा होती है इसके लिए भी वो रेड लाइट करते हैं। कुछ म्यूजिक प्ले करते हैं, तो क्योंकि म्यूजिक हमारे मन को एकाग्र होने में मदद करता है। और दूसरा, जो प्रभु स्मृति के गीत हैं, वो हमारे मन की दिशा को बदलने में भी, हमारे भाव को बदलने में भी मदद करते हैं। सारे दिन हम कोई जैसे कहा स्मृतियों में रहते हैं, और फिर हम योग में बैठे तो तुरंत हमारा मन नहीं लग पाता है। तो एक जैसे हम कहेंगे सहयोग मिलता है हमारे मन को। दुनिया में भी देखते हैं, हम कोई गीत सुनते हैं, देशभक्ति का गीत सुनते हैं तो देशभक्ति के भाव हमारे मन में आ जाएंगे। कोई ऐसे भक्ति गीत सुनते हैं तो ईश्वर के प्रति भाव मन में आ जाएंगे। तो यहाँ भी जो राजयोग के गीत हम सुनते हैं तो हमारे मन की दिशा सहज बदल जाती है। और जो स्थान हम चुनते हैं वो शांति का स्थान हो शुरू शुरू में। हालांकि ये सब आधार आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में हमें मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना है, इसलिए हम इनका आधार लेते हैं। बाद में तो हम कभी भी कहीं भी अपने मन को भगवान की याद में लगा सकते हैं, लेकिन शुरू में हम ये सब ध्यान रखते हैं तो हमें मदद मिलती है। तो ऐसा स्थान अपने घर में चुने, या घर में नहीं है तो फिर आसपास जो केंद्र है, आपके सेवा केंद्र आज सभी शहरों में हैं, तो आपके आसपास एक दो किलोमीटर में जो भी सेवा केंद्र हैं वहां भी जाकर के हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आज हमने जो समझा, परमात्मा को याद करने की जो विधि हमने समझी, उस विधि के अनुसार अब हम राजयोग का अभ्यास करेंगे। तो आप सभी सीधे होकर के बैठ जाएं। और जैसे विचार मैं आपको दूंगी, उन्हीं विचारों को अनुभव करने की कोशिश करें। हो सकता है मन इधर उधर जाएगा, लेकिन मन को पुनः उन्हीं विचारों में ले आए और तैयार करेंगे अपने मन को एक अंतर यात्रा के लिए, क्योंकि ये हमारे मन की यात्रा है ईश्वर की ओर। मन को चिंतन दें, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, मैं चमकते हुए सितारे के समान मस्तक के मध्य में विराजमान हूं, मैं अचर अमर अविनाशी हूं, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कर्म करने के लिए मैंने कर्मेंद्रियों का आधार लिया है, मैं आत्मा अपने निजी स्वभाव में शांत स्वरूप हूं, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मुझे पसंद है, शांति में ही सुख समाया है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं। ले जाए मन को इस भौतिक जगत से पार, जो मेरा असली घर है, परम धाम। मैं आत्मा वहां की रहने वाली हूं। जो शांति धाम है, मुक्ति धाम है, मेरे परमात्मा पिता भी इसी धाम के रहने वाले हैं, जो रूप में बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। शिव बाबा शांति के सागर हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शिव बाबा की समीपता में मेरा मन शांत होता जा रहा है। वो सर्वशक्तिमान है। मैं स्वयं में ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव कर रही हूं। जब परमात्मा शक्ति मेरे साथ है तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। शिव बाबा ही मेरे सच्चे माता पिता हैं, मेरे शिक्षक हैं, सद्गुरु हैं। मेरे साथी हैं, खुदा दोस्त हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। भगवान ने मुझे अपना बनाया है। और अपना प्यार देकर मेरे जन्म जन्मांतर की अभिलाषा पूर्ण की है। शिव बाबा ही मेरे परम कल्याणकारी हैं। मुझे सद्बुद्धि देने वाले हैं, श्रेष्ठ कर्म की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। मेरे मन के सच्चे मीत हैं। शिव बाबा की याद से मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। बहुत ही हल्कापन और न्यारापन अनुभव हो रहा है। शिव बाबा से शांति और शक्ति का अनुभव लेकर मैं स्वयं को पुनः इस भौतिक जगत में अपने शरीर में अनुभव कर रही हूं। लेकिन अब मेरा मन पहले से अधिक शांत और शक्तिशाली है। अपने दिन भर के कार्य व्यवहार में मैं इसे स्मृति में रखूंगी। ओम शांति।